ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम राइफल्स के बटालियन मुख्यालय को आइजोल शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जोखावसांग में स्थानांतरित करने का निर्णय मिजोरम के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कल आइजोल में बताया कि ये कदम आइजोल शहर के लिए नया अध्याय और राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार समूचे पूर्वोत्तर को एकजुट करने और मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले 10 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार क्षेत्र में पर्यटन से प्रौद्योगिकी, खेल से अंतरिक्ष और कृषि से उद्यमिता तक प्रत्येक क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने, विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को दोहराया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु में 2 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह शुरू करने की घोषणा की है। ये समूह पिल्लई पक्कम और मनल्लूर में 11 अरब 12 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। कल चेन्नई में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की नई विनिर्माण इकाई के उद्घाटन के दौरान ये घोषणा की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि 15 एकड़ में ये इकाई तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने और 5 खरब के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण का बाजार हासिल करने की भारत की महत्वाकांक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया उत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले फिटनेस और वेलनेस उत्सव का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली तथा मोटापा मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन देना है। इस दौरान रस्साकूद, क्रिकेट, बॉलिंग और स्टेशनरी साइकिलिंग तथा पंजा लड़ाना जैसे खेलों का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे तथा अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रतीक चिन्ह और गीत का भी अनावरण होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से राष्ट्रीय राजधानी में आरंभ होंगे। वैश्विक वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 35 खरब डॉलर की थी और ये अनुमान है कि 2026 तक ये 47 खरब डॉलर हो जाएगी। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार 2028 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर 57 खरब डॉलर हो जाएगी और वह जर्मनी से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले उपभोक्ता बाजार के रूप में उभरा है और उसकी वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। केंद्रीय बैंक को प्रभा और सारथी नाम की डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें बैंक की इन हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया था। पुरस्कार समिति ने कहा है कि इन डिजिटल पहलों ने कागज के इस्तेमाल को कम किया है। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों के नियंत्रण वाले एक गांव पर सेना के हवाई हमले में 6 बच्चों सहित 27 नागरिक मारे गए हैं। मांडले पीपुल्स डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि सिंगू टाउनशिप के लेट पैन हला गांव में कल हुए हवाई हमले में 30 लोग घायल हुए हैं। मांडले पीपुल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार के मुख्य विपक्षी दल का समर्थक है। पिछले वर्ष जुलाई में इसने सिंगू शहर पर कब्जा कर लिया था। सैन्य सरकार ने लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र पीपुल्स डिफेंस फोर्स और जातीय संख्या गुरिल्ला गुटों के विरुद्ध हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में कल रात मुंबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल में ये लगातार तीसरी हार है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने 44 गेंदों में 66 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।